الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چاہ کے ناظرین سلسلہ فیملی میٹرز لے کر حاضر ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. تیرے میں پہلا سوال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سوال مجھے یہ پہنچا ہے کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں, ان 3 سالوں میں شوہر نے کچھ اپنی کمائی سے نہ کھلایا ہو بلکہ بیوی خود کما کر اخراجات پورے کرے, تو ایسا کیا کرے جسے شوہر کو عقل آ جائے؟ یہ سوال ہے. آج کل دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر دونوں کو کمانا پڑتا ہے, تو کمانے کے تعلق سے ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میں انشاءاللہ آگے ایک اور سوال ہے اس ضمن میں کوشش کروں گا چرچ کر سکوں. دیکھیے شوہر پر جو نان نفقہ آپ نے لفظ سنا ہوگا خرچہ پانی, تو وہ جو شوہر پر لازم ہے اس میں گھر بھی ہے کھانا بھی ہے اور کپڑے بھی ہیں. تو اگر شوہر نے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ خرچ نہیں دیتا یعنی اپنی کمائی سے نہ کھلایا ہو, یا کھلانے کا لفظ چونکہ بیان کیا گیا ہے, تو اگر اس نے گھر اور کپڑے وغیرہ میں اگر اپنی ذمہ داری پوری کی تو 2 چیزیں تو اس سے پوری کر دیں. اب کسی سے کھانا تو یہ سب عرف اور عادت کے مطابق ہوگا, جو پریکٹس ہوگی اس کے مطابق یہ سارا اس کی ذمہ داری ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 کام پورے کرے. نان نفقہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک تقسیم ہے کہ عورت گھر کے کام سنبھالتی ہے, مرد باہر کے کاموں کو دیکھتا ہے, جاب یا اپنا روزگار وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں یہ ایشو ہے, صرف یہاں کا پرابلم یہ نہیں پتا یہ سوال کہاں سے آیا, مگر پرابلم ہے. دنیا کے کئی ممالک اس میں انوالو ہیں کہ عورتیں جا رہی ہیں وہ کما رہی ہیں وہی لا رہی ہیں اور مرد نہیں کما رہے. جی ہاں, دنیا کے ممالک میں ایسے کئی علاقے ہیں جن میں مرد نہیں کما رہے, صرف عورتیں کما رہی ہیں. حالانکہ جو قرآن نے جو مردوں کو جو اہمیت دی, الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر, اور ان کے جو ان کو جو بڑا بنایا گیا ہے, افسر کہا گیا ہے انہوں, تو جو ان کے جو اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. تو خرچ کرنا یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں, نہ کہ عورتوں کے خرچ پہ چلتے ہیں. تو اس میں میری تمام ان اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے, کہ وہ اپنے گھر کے, آپ کا کام ہے کہ آپ گھر کا خرچہ چلائیں, اور جو ایک جتنا مکان گھر یا فلیٹ یا کمرہ جو آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے وہ اگر آپ دے رہے ہیں, اسی طرح جو کپڑے عرف و عادت جو پریکٹس اور عادت اور اتوار کے مطابق ہے وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور کھانا جو مطلب کہ ایک ترقی کار کے مطابق ہے, جو پریکٹس جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق وہ آپ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اور عورت اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں. نارمل کھانا پینا کپڑے ہو رہا ہے, لیکن اب آپ بولیں کہ یہ بوٹلنگ نہیں کراتا, یہ نہیں کراتا, وہ نہیں کراتا, تو یہ پھر مطالبہ غلط ہو جائے گا. البتہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری لازمی طور پر پوری کریں کہ یہ آپ پر لازم ہے. نان نفقہ یہ بڑا مشہور ورڈ ہے, ہم بچپن سے سنتے, بچپن سے مراد تھوڑے بڑے ہونے کے بعد سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بارے شریعت میں نکاح کا جو باب ہے اس میں نان نفقہ کیا ہے, مرد کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ اگر آپ پڑھ لیں تو کہ تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد ملیں گے. اب اسے ایک سوال اور بھی مجھے ملا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا یہ سوال لگتا ہے کہ بیگم علیحدہ گھر کا بولتی ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا, اب اس میں الگ گھر کے بولنے سے کیوں, एक ये सवाल आएगा, अगर शौहर ने उतना घर दिया है जितना घर देना उसकी जिम्मेदारी को पूरा कर देता है और वो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी दरख्वास्त ये है इस्लामी बहन से कि आप हिम्मत और सब्र से काम लें। और अगर मिसाल के घर के हालात की वजह से अगर आपका यह मुतालबा है कि घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, कंबाइंड फैमिली है या और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो देखिए ये इतना प्रेशर करने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इसमें मर्दा से काम करना पड़ेगा। दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला आपके जो शोहर हैं इनके हालात ऐसे कर दे कि वो अफोर्ड कर सकें। नहीं कर सकते बाज़ औक़ात, अब मकान इतने महंगे हो गए, किराए इतने ज़्यादा हो गए और तनख्वाहें इतनी है ही नहीं, महंगाई बढ़ रही है, राशन पूरा हो नहीं रहा है, खाना पीना पूरा हो नहीं रहा है, ईद आती है तो खर्चा हो जाता है, रमज़ान शरीफ की आमद होगी तो भी कुछ ना कुछ अखराजात बढ़ जाते हैं। दुनिया के कई मुल्कों में रमज़ान में कीमतें कम कर दी जाती हैं और बिलखसूस में पाकिस्तान का कहूँ तो बदकिस्मती के यहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मुनाफाखोर लोग बस अल्लाह इनको उम्मत का गम और उम्मत की सही मायने में हमदर्दी अता फरमाए। और अभी भी देखें ना महंगाई कितनी है, कितनी महंगाई है इस वक्त, ऐसी महंगाई के अंदर मतलब राशन नहीं आदमी खरीद पा रहा है तो मकान कहाँ से खरीदेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो मेरी दरख्वास्त है इस्लामी बहनों से कि बराए करम इन दुख और परेशानी की घड़ियों में शोहर को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में लें। प्रेशर करती रहेंगी कुछ नहीं होगा, घर का सुकून ज़ाया हो जाएगा, बर्बाद होगा। आपके सामने के जो खाता पीता कमाता होगा ये उमूमन पता होता है। अब ऐसे में आप कहेंगे मकान लो तो बेचारा क्या फिर रिश्वतें ले, फिर सूद खाए, चोरी करे, गुनाहों भरे रास्ते अख्तियार करे, क्या करे फिर वो। अच्छा, अब चूंकि शोहर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये कोशिश करें कि जिस वजह से ये मुतालबा बढ़ता है तो उस उन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि पैसे नहीं है, वक्त, नरमी, प्यार, उसने अखलाक, अगर इसकी कहीं कमी है तो कि मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी भाइयों से, तो उसके जरिए कुछ माहौल एडजस्ट करने की कोशिश करें। बाज़ों का कई सवाल ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे टाइम बहुत लग जाएगा और वक्त इतना है नहीं। कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा एक काम है कि हम अदल इंसाफ के साथ घर में अपना वक्त गुजारें और हक का साथ दें, ना हक की ताइद ना करें, ना हक की फेवर ना करें। अगर कोई ना हक बात हो रही है, कोई ज्यादती हो रही है घर के अंदर, तो आप अपना किरदार अदा करें। अगर वालिदैन की तरफ से खुदा ना खास्ता ना इंसाफी हो रही है तो वहाँ अपना किरदार अदा करने का अंदाज, जो एक नरमी अपने इंतहा की होगी, अखलाक अपने इंतहा को होगा, इस तरह का अंदाज होगा कि फिर आप भी बदतमीजी की तरफ ना उतर आएँ। और अगर खुदा ना खास्ता बीवी की तरफ से, बहनों की तरफ से, भाई की तरफ से कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो वहाँ पर समझा अब आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना बोलें कि कुछ नहीं यार अभी कौन पड़े झगड़ों के अंदर, तो ये नहीं है झगड़ों में कौन पड़े, झगड़े ख़त्म करना, घर में आग लगी हो बोले कौन बुझाएगा, तो ये तो कोई मतलब जवाब ही ना हो हमें यार आपके घर में आग लगी है, वो लगने तो यार अभी कौन आग बुझाएगा, तो आपको आग की तपिश नहीं आएगी, आप आग से नहीं जलोगे, तो ऐसा नहीं, किरदार तो अदा करना पड़ता है। और आप कहेंगे यार ये कैसी परेशानी, तो परेशानी तो होगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो शेर है ना कि फिक्रे माश बद बला होले मात जा गुजा, लाखों बला में फंसने को रुख बदन में आई क्यों। अब पैदा हो गए तो मसाइल तो हैं, शादी किए तो प्रॉब्लम्स तो होंगे और हालात अब जो हैं इनको, अब पैसा नहीं है तो अल्लाह ने अक्ल व हिकमत अता किए तो उसका तो इस्तेमाल करें ना, सब्र का सब्र अल्लाह ने अता किया उसका तो इस्तेमाल करें ना, तो इंशाल्लाह घर की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि हालात में प्रेशर करने के बजाय थोड़ा नरमी, प्यार और मोहब्बत के साथ कंप्रोमाइज़ करें कि इस ये जो कई सवाल ऐसे हैं जिनमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो इस्लामी भाई है ना वो भी बेचारा बड़ा परेशान है, यानी ये इतना आजमाइश में होता है। मैं आपकी ये आप पूरी फैमिली से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो लड़का है ना, जो एक तरफ बेटा है, एक तरफ शोहर है, एक तरफ भाई है, ठीक है, और जब ये घर में आया है ना तो भाई बहनों की तरफ से एक अलग से प्रेशर है, माँ बाप की तरफ से एक अलग से शिकायतें हैं, और कमरे में जाए तो बीवी की तरफ से एक अलग से मसला। अब मुझे बताइए यार ये आदमी क्या करे, कहाँ जाए, मदीने क्या करे यार ये आदमी। फिर पता है मुझे पैगाम है एक, यार घर जाने का दिल नहीं कर रहा, पाँव भारी पड़ रहे मेरे, मैं क्या करूं घर जाकर, घर जाऊंगा जैसे दरवाजा खुलेगा गरम गरम हवाओं के, अब इतनी सर्दी में भी गरम गरम हवाएं आएंगी, वो समझ रहे गरम गरम हवाएं फिर क्या है, मतलब सब क्या करे, वो बाहर से काम करके आया है, रोजगार की कमी है, कामकाज की कमी है, रश, ट्रैफिक, बस और जनाब किराए, अगर नौकर है तो फिर सेठों की 10 बातें, ये सारा उलझाव के बाद जब ये घर आए तो घर में भी उलझाव ही उलझाव, तो फिर आदमी कितना परेशान रहेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे फिर कोई खुदा ना करता कोई ऐसा काम ना कर जाए जो आपको और हम सब सबको पछताना पड़ जाए। तो मेरी दरख्वास्त है, देखिए घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अगर माँ सब्र कर लेगी, बाप सब्र कर लेगा और शिकायतों को आप मतलब के नज़रअंदाज कर दें कि कितना बड़ा मसला हो गया कि आप डिस्कस कर रहे हैं, खाने पीने उठने करने साफ सफाई सुथराई के थोड़े बहुत मसले होंगे, उठने जागने सोने के कुछ ना कुछ मसाइल होंगे, तो कभी ऐसा कोई मौका मिले तो कोई नरमी प्यार और मोहब्बत के साथ शेयर कर लिया जाए। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर झगड़े 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 रोज़ाना की बुनियाद पर मुँह चढ़े हुए हों, घर कैसे मतलब अमन का गहवारा बने। अच्छा, अब इस तरह की मुश्किलात वाले जो सवालात हैं, मैं आपको एक दुआ मदनी चैनल की स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये दुआ है और ये दुआ इंशाल्लाह मुश्किलात और परेशानियों में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसका आपको हल मिलेगा। ये देखें, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कोई बेचैनी और परेशानी आती या हुआ करती तो उस वक्त आप इस दुआ का विर्द फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल हकीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये दुआ है, तिर्मिज़ी शरीफ का हवाला है हदीस का, तो ये देख लें। अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर हैं और अगर आपके पास मोबाइल है तो मेरे चाहें तो भले तस्वीर खींच लें आप, जी जल्दी उठकर आप तस्वीर खींच लें और ये पढ़ने की आदत, ये मोबाइल में भी सेव कर लें आप, इसको घर में लगा दें ताकि घर वाले इसको पढ़ सकें। तो ये परेशानियाँ जो हैं इसके हल के लिए दुआएँ भी हैं और विरुद्ध वज़ाइफ भी हैं, ये पढ़ें। एक बुनियादी हल ये भी है कि मेहरबानी करके खामोश रहें, हिम्मत और सब्र से काम लें, शिकायतों को मिनिमाइज कर दें, कम से कम शिकायतें कोशिश करें कि उसको आप ख़त्म कर दें। तो मेरे रब ने चाहा तो चीज़ें ख़त्म, देखें धूल है ना, धूल जितनी ठोकर मारोगे ना धूल उड़ती है, अगर आप इसको ठोकर मारना बंद कर दो बैठ जाएंगे। घर के कई मसाइल ऐसे हैं जिन्हें बार बार आप छेड़ते रहेंगे ना तो ये छिड़ते रहेंगे, अब छेड़ना बंद कर दे ये छेड़ना बंद हो जाएंगे, ये बैठ जाएंगे, बैठ जाते हैं मसाइल। वक्त गुजरता है, बड़े बड़े गम बंदे के मतलब जो है ना वो हल्के पड़ जाते हैं। तो अल्लाह करे के मतलब कि ये जो मैंने अर्ज किया है इसका कोई हल आप निकालने में कामयाब हो जाए। कॉल दें।
मदनी मतारी हाफिजाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरानी शुरा, आप मदनी चैनल पर जब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की आधी परेशानियां तो इसी वक्त खत्म हो जाती है आपकी ज़ियारत करके। तो हुजूर दुआ फरमा दें हमारे घर की अमन सुकून के लिए कि अल्लाह ताला हमारे घर को अमन सुकून का गहवारा बनाए और अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके भी इल्म अमल में बरकतें खूब तरक्कियां अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह।
आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। दुआ करें अल्लाह मुझे आपके हुस्ने जन से बेहतर बनाए, प्यारे हबीब के सदके में मेरे गुनाह माफ़ हों, मेरी ख़ताओं का अल्लाह माफ़ फरमाए, गलतियों से बचा कर अल्लाह दीन की खिदमत ले, इखलास भी नसीब हो, हुब्बे जा से भी अल्लाह नजात नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी कॉल दें।
भैजन मेरी शादी है एक डेढ़ माह पर, मैं मिलाद पास कराने की सोच रहा हूँ खेड़ाबंदी पर और मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं हम ढोलक भी मंगवाएंगे और गाने बजाने भी चलवाएंगे। यही इमरान भाई से सवाल है कि वो सही रहनुमाई कर दें।
मैं क्या रहनुमाई करूँगा, आप तो बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं, बड़े प्यारे जा रहे हैं कि शादी के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद वाह, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में हो तो फिर खुशियाँ, राहतें, बरकतें भी नसीब होंगी। और अल्लाह ना करे ढोल बाजे तमाशे, बेपर्दगी, गुनाह, फिर वो आतिशबाजी और पता नहीं वो फायरवर्क, वो क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, तो खुद हम अपने हाथों शादी खाना बर्बादी का एहतमाम कर रहे होते हैं। तो और फिर इसके जो दुनियावी नुकसान, माली नुकसान, जानी नुकसान, और फिर पता नहीं क्या क्या मसाइल हो जाते हैं। तो ई और फिर शरअ नाजायज, तो ऐसे तो काम वैसे शादी में नहीं करने चाहिए। आप निकी की दावत देते रहे, मैं तमाम तौर उन लोगों से जो शादी पर ऐसी हरकतें करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने ना मना फरमाया है, तो ना करें। शादी सुन्नत है, आप कहते हैं शादी सुन्नत है, तो शादी सुन्नत है तो फिर उसको नेकी और अच्छे तरीके से करें ना, सुथरे और साफ तरीके से करें, पाकीजा तरीके से करें, तो शादी खाना आबादी की सूरतें बनेंगी। तो मेहरबानी करके ये जो भी शादी में इस तरह के ढोल तमाशे करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी ऐसा ना करें। दावत इस्लामी का तो ये खास खसूसियत है कि उसने शादी के मौके पर महफिल नात को इसने मतलब के राइज करने, कुछ महफिल नात तो हो ही रही थी मगर शादी के मौके पर चूंकि फंक्शन और अजीब गरीब किस्म के प्रोग्राम होते हैं, तो अल्लाह मेरे पीर पीर मुर्शिद का मेरे को सलामत रखे, इन्होंने माशाल्लाह बिलखसूस ये एक ट्रेंड दिया और खुद खुद जा जाकर शिरकत फरमाते थे। तो ये चीज़ें तो ये आज भी हो रहा है, तो बस यही शरीयत के मुताबिक हो। अच्छा, शादी से रिलेटेड मुझे व्हाट्सएप पर एक सवाल आया, मैं सवाल से पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ सवाल के जिम्मन में कि जब शादी है ना, तो बेटे की या बेटी की जिसकी भी शादी, आप बेटे या बेटी शादी कर रहे हैं, तो औलाद और माँ बाप, मेरी दरख्वास्त ये है कि दोनों अंडरस्टैंडिंग करें कि मतलब कि उसको भी राजी करें वो भी राजी हो, यानी औलाद माँ बाप को नाराज करके और उनकी नाफरमानी करके या उनको मतलब के इग्नोर करके शादी की तरफ ना बढ़े, और वालिदैन को मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अगर अपने बच्चे और बच्चियों की शादी के लिए जाएं तो मेहरबानी करके उनकी राय और उनको भी अपने साथ ऑन बोर्ड करें, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। और अगर मिसाल के तौर पर कोई बेटा या बेटी ये चाहते हैं कि हमें एक नेक रिश्ता मिले, यानी लड़का आपका नेक है, अच्छे माहौल का है, दावत इस्लामी वाला है, या कोई आशिकान रसूल की सोहबत उसे मैसर है, और एक नेक बापर्दा और नमाजी लड़की चाहता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप वही लड़की ढूंढे वो दुरुस्त चाह रहा है। और अगर बेटी नेक है, परहेजगार है, अच्छी है, बा हया है, बा पर्दा है, और वो चाहती है कि मेरी शादी किसी नमाजी नेक आशिक रसूल लड़के के साथ हो, तो माँ बाप को चाहिए कि वो खुश हो कि यार बेटी हमारी माशाल्लाह एक नेक रिश्ता चाहती है। अब उसके लिए आप वो रिश्ता ढूंढो जो बेचारी उसकी नेकी और परहेजगारी को आप दाव पर लगाएंगे, या उस लड़के के लिए वो रिश्ता ढूंढे जो बेचारा ये नमाजी है और वो खुदा ना करता नमाजी ना रहे। अब वालिदैन सोचेंगे वालिदैन क्या कर रहे हैं, मेहरबानी करें ऐसा ना करें। लड़की के लिए भी नेकी परहेजगारी को बुनियाद बनाएं, लड़के के लिए नेकी परहेजगारी को बुनियाद, और दोनों मतलब वालिदैन और जिनके रिश्ते होने हैं उन सबको एक पेज पर होना चाहिए, तो अल्लाह की रहमत शामिल आल रही तो घर अच्छा चलेगा, वरना मतलब कि दोनों आप उसके वो खुशी नहीं होंगे तो वो दोनों मियाँ बीवी रहेंगे कैसे? आपने थोड़ी बिचार आप कैसे घर चलाएंगे? और अगर वालिदैन को आप इग्नोर करके शादी करते हैं तो इसके नुकसान ये होते हैं कि जब आपके दरमियान खुदा ना करता कुछ 19-20 हो जाता है, तो फिर वालिदैन को आप कहते हुए अव्वल तो झिझकते हैं कि अब किस मुंह से बोले, और फिर वालिदैन भी इन्वॉल्व होने में भी झिझकते हैं कि अब क्या, फिर बाद वक्त माँ बाप बोलते हैं कि यार ठीक है तुमने अपनी मर्जी से शादी की तो भुगतो। मेरी दरख्वास्त वालिदैन से ये, अगर खुदा ना खासा ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है कि औलाद ने आपको एतमाद में नहीं लिया, या कोई चलो हो गई शादी, दुरुस्त शादी हो गई शादी, ठीक है अब हो गई, ठीक अब खुदा ना खासा इनकी नहीं बननी, नहीं बन रही, तो अब ये कहकर पीछे हट जाए कि नहीं ठीक अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने हमें क्या, ऐसा ना कर। आपकी औलाद है ना, अगर औलाद गलती करेगी तो माँ बाप ही उनका साथ देंगे ना, उनका घर टूट जाएगा, अल्लाह ना करे। माँ बाप समझदारी का मुजाहरा करें, और समझदारी का मुजाहरा करके औलाद में सुलह कराएं। मियाँ बीवी अगर एक बहू या एक बेटा या एक बेटी और एक दामाद है, तो आप अपना रोल प्ले करें, बाहर वाले अगर काम करें तो अच्छा नहीं कि आप अपना रोल प्ले करें, और देखिए कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है, और नरमी प्यार और मोहब्बत के साथ अपने बच्चों के घर को टूटने से बचाएं। इंशाल्लाह इसकी आपको बरकतें नसीब होंगी। अच्छा, अगर बीवी शोहर को अच्छी ना लगे तो क्या करना चाहिए? उसकी अच्छी आदतों की तरफ गौर करना चाहिए, जो हदीस पाक में हमें तरबियत दी गई है कि उसकी अच्छी चीज़ों की तरफ ही तो गौर करो। देखो कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर तो खराब है ही नहीं ना, मुसलमान में खूबियां नहीं होती, कई खूबियां भी होती हैं औरत के अंदर, बच्चों के ताल्लुक से, पकाने करने के ताल्लुक से, उसकी वजह से कई गुनाहों से बचा होता है बंदा, और बहुत सारी खूबियां होती हैं। तो हदीस में एक उसकी खूबियों पर नजर रखो। इसी तरह शोहर के अंदर भी अगर कहीं खामियां आए तो बीवी को जैसी खूबियों पर भी नजर रखे। तो खूबियां भी होती हैं, तो खूबियों पर नजर रखेंगे तो इंशाल्लाह खामियों से कोई नजर हटेगी तो अल्लाह ने चाहा तो घर चलने की सूरत में आना आपको नजर आएगा। जी कॉल दें।
माशाल्लाह निगरानी शुरा का ये सिलसिला बहुत प्यारा लगता है। हुजूर आप अर्ज ये है कि अगर शौहर ही बीवी को अगर फैशन करने को कहे तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, थोड़ा शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। बड़ा मालूमाती सिलसिला है, जज़ाकअल्लाह खैरा, आप ऐसे सिलसिले लेकर आते हैं, हमारे इल्म में इजाफा होता है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, जन्नतुल फिरदौस में आपका बेहिसाब दाखिला हो जाए।
आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं से नवाजने का, हौसला अफजाई करने का। अगर शौहर बीवी को खुद फैशन का कहता है, अगर अपने लिए कहता है कि मेरे लिए बन और सवर, मेरे लिए बन और सवर, यानी अगर उसके लिए फैशन करने का कहता है तो शोहर गलत तो नहीं है ना। और बीवी का तो है कि वो अपने शोहर के लिए जीनत इख्तियार करे, उसके लिए बन सवर करे और रहे घर में, औरत शोहर के लिए बन सवर कर रहे। यहाँ तो ये है कि बाहर सारा बनना संवरना घर के बाहर के लोगों के लिए, शोर के लिए बनना संवरना तो बस अब क्या इसमें मैं ज्यादा कलाम करूं, जबकि बनना संवरना है ही शोर के लिए। बाहर है क्या, बाहर पर्दा है, बुरके हैं, शरी पर्दा है और क्या है, उसमें क्या बनना संवरना होगा, गौर करें किसको दिखाना है बाहर। तो ये नहीं, तो अगर शोर आप शोर कहता है कि इस बनने संवरने में बेपर्दगी और उसको गुनाह की तरफ कहता है, तो अब अल्लाह की नाफरमानी तो बीबी नहीं ना करेगी शोहर की फरमा बरदारी। देखिए शोहर हो वो के वालिदैन हो, जब अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का कहा जाएगा तो अब इताअत नहीं रहेगी, तो इताअत नहीं रहेगी। मगर इसमें घर के माहौल को भी बिगड़ने से आपने बचाना है। जी कॉल दें।
हामिल रजा अर्ज कर रहा हूँ। बहुत सी मरतबा घरों के अंदर मसाइल होते हैं, झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पर, और बाज मरतबा पुरानी बातें याद करके कि भाई पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था, इस पर आज लड़ाई होती है। यानी पुरानी बातों को याद करके फिर घर में मसाइल पैदा होते हैं, तो उसके ताल्लुक से कुछ मदनी फूल था फरमा दीजिए।
अच्छा कॉल तो बहुत अच्छी आई है। जो आपने जो मौजू बयान किया है उसमें तो जाहिर है कि झगड़े की सूरतें पैदा होती हैं, माजे की बातें करने से, तूने ऐसा किया था, जैसे मिसाल के तौर पर घर में कोई लड़ाई झगड़ी हो गए थे, ना इत्तेफाकी हो गई थी, फिर किसी ने इन्वॉल्व होकर आपके दरमियान कोई सुलह करा दी, कोई घर बना दिया, तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है कि जब घर में भेज दिया जाता है तो फिर जब दोनों मिलते हैं तो फिर पुरानी बातें छेड़ते हैं, हाँ आ गई या होगा हाँ आप समझ गए और फिर तुमने ऐसा किया। देखे अगर आपने शादी हार जीत के लिए की है क्या कि मैं शोहर कह के मैं बीवी को हरा कर जीऊंगा और बीवी कहे मैं शोहर को हरा कर जीऊंगी, आपने शादी इसलिए कब की थी? आपने तो घर गृहस्थी चलानी है, बच्चे हैं, इनकी परवरिश है, प्यार और मोहब्बत से रहें, और मतलब कि एक निज़ाम बना हुआ है इस्लाम और दीन ने, एक तरीक़ेकार दिया है, औरत पढ़े तो सही शोहर के हुकूक क्या है यार, वो समझे तो सही, और शोहर भी तो पढ़े तो सही कि बीवी के बारे में, औरत के मामले में अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे क्या हुक्म इरशाद फरमाया है, और फिर उसको अमली जामा घर में पहना कर देखे तो सही, फिर देखे घर में किस तरह मोहब्बत और प्यार के मदनी फूल खिलते हैं। ये बराए करम इसको पढ़ें, और पुरानी बातों को छेड़ने के बजाय अगर इस तरह कोई मतलब की इच्छुक है कि अगर रीस्टार्ट लिया जाता है, अब रीस्टार्ट ले रहे हैं तो फिर इसको पुरानी छोड़ दें और वे माजी के तस्करे बंद कर दें। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं कि एक शख्स थे मसूद हमदानी, नेक आदमी थे और इनकी तरफ लोग मामलात में रुजू करते थे, यानी इनसे मसाइल पूछते थे। जब भी इनके सामने किसी आदमी के कमजोर पहलुओं का तस्करा होता, नेगेटिव बात होती, तो वो एक ही बात कहा करते, मेरे सामने किसी के माजी का जिक्र ना किया जाए। अच्छा अब इनका इंतकाल हो गया तो किसी ने इन्हें ख्वाब में देखकर पूछा, बताओ कैसी गुजरी? کہنے لگے مجھے میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے رب نے مجھے فرمایا آج ماضی کا ذکر نہیں کیا جائے گا، فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ تو ماضی کی باتوں سے کئی مرتبہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو ماضی کے تذکرے کرنے کے بجائے نیا اسٹارٹ لیں۔ جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں، مسائل کا کچھ حل ہم دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آتا ہو کہ نہیں یار اب بنا لو، تو اس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، درگزر سے کام لے لیں کہ چلیں نیا اسٹارٹ، ری اسٹارٹ، نیا آغاز۔ اور اگر کوئی سے روٹھے ٹوٹے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کال کر کے کوئی رابطہ کر کے منا لیں، اور اگر شوہر رابطہ کرے تو بیوی بڑھ جائے، بیوی رابطہ کرے تو شوہر بھی پھر مطلب کہ آگے بڑھ کر بڑا دل کر کے لے لے۔ اور والدین کو دونوں طرف کے چاہیے کہ دونوں طرف سپورٹ کریں گے، جا بیٹا تیرا گھر آباد کر، یہ یقین مانے مدینہ ہو جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ دعوت اسلامی کی یہ کتاب جو میں نے اس سلسلے کے لیے خاص اپنے ساتھ رکھی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، اس کتاب کا درس مہربانی کر کر اپنے گھر میں جاری کریں۔ اللہ نے چاہا، رب نے چاہا، پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کا گھر امن، پیار و محبت کا اور انشاءاللہ برکتوں کا گہوارہ بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمہیں